दीवा ने आर्यांश को कॉल करके हॉस्पिटल बुला लिया था, साथ ही उसे हीट स्ट्रोक होने की बात बताई थी। दीवा ने अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए आर्यांश को बताया कि डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है क्योंकि वो रात को सो नहीं पाती। इनडायरेक्टली दीवा ने सारा इल्ज़ाम आर्यांश पर लगा दिया था क्योंकि वो उसे रात को सोने नहीं देता था। आर्यांश को भी उसकी बातों से समझ आ रहा था कि वो उनकी नज़दीकियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। अचानक आर्यांश दीवा के पास आया और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। दीवा इधर उधर नजरें चुरा रही थी, लेकिन आर्यांश ने उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ किया और आंखों में आंखें डालकर शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, तो तुम इसका दोष मुझ पर डाल रही हो? नहीं, मैं कहां कुछ, दीवा ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो आर्यांश से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी। आर्यांश उससे कुछ कदम दूर हो गया। दीवा बिस्तर पर बैठने लगी, लेकिन आर्यांश ने फिर से उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है? हाँ, मैं बस ये कह रही थी कि आगे से हम जल्दी सो जाएंगे ताकि मेरी नींद पूरी हो जाए और मैं बीमार ना पड़ूं। दीवा ने इस बार काफ़ी समझदारी से अपने शब्दों का चुनाव करके जवाब दिया। ठीक है, फिर आज रात तुम जी भर के सो लेना, आर्यांश ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी बात सुनकर दीवा ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत थोड़ी ही देर की थी। आर्यांश ने शरारती मुस्कुराहट के साथ आगे कहा, पर जल्दी सोने के लिए सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। उसकी मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। दीवा ने मासूमियत से पूछा, और वो कैसे? वो ऐसे कि हम बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, यहीं करना चाहोगी या मेरी गाड़ी में चलें? आर्यांश टीजिंग स्माइल के साथ बोला। दीवा का दिल मर जाने का मन कर रहा था। आर्यांश के दिमाग में यही सब चलता रहता था, वो कैसे उस पर यकीन कर सकती थी? लेकिन ये हॉस्पिटल है, यहाँ कोई आ गया, किसी ने कुछ देख लिया तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, दीवा ने लाचारी से कहा। तो क्या हुआ, हम रूम बंद कर लेंगे, आर्यांश बेपरवाही से बोला। तुम्हें मुझसे इतना ही मतलब है ना, तुम्हारे दिमाग में दिन रात यही चलता रहता है, मैं अच्छे से जानती हूँ, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। कभी कभी उसे लगता था कि आर्यांश को उससे सिर्फ बेड तक ही मतलब है, उसके अलावा वो उसकी कोई परवाह नहीं करता। आर्यांश ने सिर हिलाया और बोला, तुम नाराज क्यों हो रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक आदमी जिस औरत से प्यार करता है, थोड़े टाइम में वो उससे बोर हो जाता है, जबकि मैं तो हर रात तुम्हें और ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। एहसान है आपका, दीवा ने सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा। कोई बात नहीं, अच्छा बताओ तुमने क्या डिसीजन लिया, कहाँ चलना पसंद करोगी, आर्यांश ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसकी आंखों के कोने में हल्की सी मुस्कुराहट थी। दीवा को इस तरह गुस्से में देखकर उसे मजा आ रहा था। दीवा बिल्कुल चुप थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर आर्यांश ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, जैसा कि तुमने कहा कि हॉस्पिटल में कोई भी नर्स आ सकती है, कार में जगह काफी कम है, लेकिन सब कुछ बहुत एक्साइटिंग होगा, कार ही ठीक रहेगी ना मिस कोयंका? तुम बाहर दफा हो जाओ, दीवा गुस्से में भड़कते हुए बोली। बाहर क्यों दफा होना है, ऐसा करता हूँ यहीं दफा हो जाता हूँ, आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा। उसने दीवा को उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पास आकर लेटने लगा। तभी दीवा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुक जाओ, रुको, यहाँ नहीं। ये दीवा का वर्किंग प्लेस था, अगर गलती से भी कोई नर्स वहाँ आ जाती और उसे आर्यांश के साथ इस हाल में देख लेती तो उसकी बहुत बदनामी हो जाती। अच्छा तो तुम्हारा कार में करने का मन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह बदल देते हैं, आर्यांश ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। आर्यांश उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, तभी दीवा को कुछ महसूस हुआ, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई। मेरे पीरियड्स आ गए हैं, वो खुश होते हुए बोली। तुम झूठ बोल रही हो, जब तक मैं खुद नहीं देख लेता मुझे यकीन नहीं होगा, आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा। उसे लग रहा था कि दीवा बहाना बना रही है। अरे सच में, झूठ नहीं बोल रही हूँ, दीवा ने जवाब दिया। उसने जल्दी से अपने बैग से सैनिटरी पैड निकाला और बाथरूम की तरफ दौड़ने लगी। दीवा को सचमुच राहत महसूस हो रही थी, इस वजह से नहीं कि वो आज आर्यांश से बच गई थी, बल्कि इस वजह से कि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। हालांकि उसने मेडिसिन ली थी और इसके चांसेस नहीं थे, लेकिन पीरियड्स ना आने की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में थी। वहीं आर्यांश बाहर हैरान खड़ा था, उसे खुद पर डाउट हो रहा था, उसने कभी प्रिकॉशन नहीं लिया था, फिर दीवा अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई थी? चेंज करने के बाद दीवा बाथरूम से बाहर आई, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने आर्यांश को परेशान करने के लिए कहा, मिस्टर कपूर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मुझे सच में पीरियड्स आ गए हैं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचो कि पीरियड्स आ गए हैं तो तुम बच गई हो, आर्यांश ने उसे परेशान करते हुए कहा। दीवा के चेहरे की मुस्कुराहट पल में गायब हो गई, उसे समझ नहीं आया कि आखिर आर्यांश करना क्या चाहता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यांश इस हद तक गिर जाएगा कि ऐसे समय में उसके साथ रिलेशन बनाने के बारे में सोचेगा। दीवा उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी, तभी आर्यांश उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मेरे साथ गाड़ी में चलो। दीवा कुछ नहीं कह पाई। आर्यांश उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी में ले आया था। अचानक वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने दीवा को अपने पास बैठने का इशारा किया। उसने गाड़ी की छत खोल दी थी। मौसम काफी अच्छा था, ठंडी हवाएं दीवा को सुकून दे रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यांश उसे इस तरह लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएगा। पहले भी वो दीवा की बीमारी में उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाने वाला था, वो तो बस दीवा को परेशान कर रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए आर्यांश ने एक नज़र दीवा की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठने के बजाय खड़ी होकर खुली हवा का आनंद ले रही थी। आर्यांश के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट उभर आई। न जाने क्यों उसे दीवा को खुश देखकर दिल से खुशी महसूस हो रही थी। क्या मुझे इससे प्यार हो गया है, आर्यांश के दिल के कोने से आवाज आई। आर्यांश और दीवा के कॉन्ट्रैक्ट का टाइम लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन आर्यांश उसे आजाद नहीं करना चाहता था। वो उसे देखना चाहता था, महसूस करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। गाड़ी चलाते हुए आर्यांश अपने ख्यालों में खो गया था। अचानक रेड लाइट होने पर उसने ब्रेक लगाए। वो तो सीट बेल्ट पहने हुए था, वरना दीवा नीचे गिर जाती। उसने आर्यांश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर कपूर ध्यान से ड्राइव कीजिए, आपकी जान बहुत कीमती है। आर्यांश ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो दीवा चुप हो गई। आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही, इसी तरह चुपचाप बैठी रहो। इतने वक्त तक साथ रहने के बावजूद दीवा को कभी भी आर्यांश का बिहेवियर समझ नहीं आया। कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी तो अगले ही पल वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाता था। दीवा ने कुछ नहीं कहा और वे दोनों आगे घूमते हुए जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जैन फैमिली में काफी मायूसी का माहौल था। लिविंग रूम में लगी बड़ी सी टेबल पर काफी सारी तस्वीरें बिखरी हुई थी, जिनमें ज्यादातर आर्यांश और दीवा एक साथ थे। कियाना और मिस्टर जैन साथ में बैठे हुए थे। कियाना उन फोटो को जाने वाली निगाहों से देख रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर बांध ली थीं कि उसके नाखून उसी को चुभ गए थे। मिस्टर जैन ने कियाना को शांत करते हुए कहा, काम डाउन कियाना, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कियाना दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा बेदर्द थी। जब उसके डैड राजवीर जैन और उसकी सौतेली माँ हर्षाली का अफेयर चल रहा था तो हर्षाली प्रेग्नेंट हो गई थी। उसकी रियल मॉम को इसके बारे में पता चला तो उसने सुसाइड कर लिया था। कियाना ने बदला लेने के लिए हर्षाली को इतने ऊंचे से धक्का दिया था कि उसका मिसकैरेज हो गया था और वो आज तक माँ नहीं बन पाई थी।
कियाना के दिल में इस वक्त यही चल रहा था कि वो दीवा को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो उम्र भर किसी लायक न रहे। कियाना ने जल्दी से निगाहों से राजवीर की तरफ देखकर कहा, आप मुझे शांत रहने को कह रहे हैं? 2 महीने पहले मैंने इस लड़की को आर्यांश के घर पर देखा था, तभी मुझे डाउट हुआ था। आर्यांश ने कहा कि ये उसकी नौकरानी है, वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकता है डैड? अगर आर्यांश और इसके बीच कुछ चल भी रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, राजवीर ने जवाब दिया। मैं इस तरह शांत नहीं बैठ सकती, मेरी हेल्प कीजिए, कियाना ने सिसकते हुए कहा। ठीक है, फिर थोड़ा इंतजार करो और वो करो जो तुम्हारा दिल चाहे। अब तुम बच्ची नहीं रही, बच्ची थी तब भी बहुत समझदार थी, अब बड़ी हो गई हो तो पता है ना उस लड़की के साथ क्या करना है, राजवीर ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। उन्होंने अपनी तरफ से कियाना को पूरी छूट दे दी थी, अगर वो कुछ गलत भी करती तो राजवीर उसे बचा सकते थे। कियाना ने सिर हिलाकर कहा, मैं सोच लूंगी मुझे क्या करना है। राजवीर जैन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आर्यांश की जिंदगी में कोई और लड़की थी, वो कब का उसे अपना दामाद मान चुके थे। बिजनेस की दुनिया ऐसे ही होती थी, यहाँ शादीशुदा होने के बावजूद आसपास कई लड़कियां घूमती रहती थीं। जैन फैमिली और कपूर फैमिली के बीच रिश्ता अच्छा था, वे चाहते तो कियाना और आर्यांश की शादी कब की कर चुके होते, लेकिन कपूर फैमिली ने कभी आर्यांश पर दबाव नहीं बनाया। उनके घर की बहू बनना आसान नहीं था, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक आर्यांश को उस लड़की से प्यार ना हो। राजवीर को कियाना पर पूरा भरोसा था कि वो अपने रास्ते के कांटों को हटाकर आर्यांश से शादी कर लेगी, फिर क्या फर्क पड़ता था कि वो शादी के बाद किसी और के साथ रिश्ता बनाकर रखे। वहीं कियाना दीवा और आर्यांश की तस्वीरों को देख रही थी। उसने एक फोटो उठाई जिसमें दीवा ने व्हाइट कलर का फ्लोरल ऑटम ड्रेस पहना हुआ था। उसे याद था कि ये एक ही पीस डिजाइन हुआ था, उसने इसे लेने की बहुत कोशिश की थी लेकिन पहले ही वो ज्यादा कीमत देकर खरीद लिया गया था। उसे इस वक्त इस बात से जलन नहीं हो रही थी कि दीवा ने वो ड्रेस पहनी थी, ड्रेस से ज्यादा गुस्सा उसे उस फोटो पर आ रहा था जिसमें आर्यांश ने दीवा को अपनी बाहों में उठा रखा था। कियाना ने उस फोटो को अपने हाथ में मरोड़कर फाड़कर फेंक दिया। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, ठीक इसी तरह से मैं मेरे आर्यांश की जिंदगी से तुम्हें बाहर निकालूंगी, तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी की तरह है, आर्यांश ने तुम्हें एक नौकरानी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था तो मैं तुम्हें अपनी नौकरानी बनाकर ही रखूंगी। लो जी, एक विलन की एंट्री हो गई है, देखते हैं आर्यांश दीवा को इस साइको से कैसे प्रोटेक्ट कर पाता है। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक पढ़कर समीक्षा कर दीजिए।